वेरितास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर।
रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सर्विस में आप सभी को प्रवीण परमार का प्यार भरा नमस्कार तथा आज के इस प्यारी से सभा में हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज के समय सारणी के अनुसार आप सुन पाएंगे आज का बाइबल पाठ, प्रभुवचन, कार्यक्रम संत सानिध्य और भक्ति गीत। तो आइए दोस्तों, हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं पवित्र बाइबल के पाठ से। तो आइए सुनते हैं आज का पहला पाठ जो लिया गया है नबी इसाईस का ग्रंथ अध्याय 29 वाक्य संख्या 17 से 24 तक, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।
थोड़े ही समय के बाद लेबानोन फलवाटिका में बदल जाएगा और फलवाटिका जंगल बन जाएगी। उस दिन बहरे ग्रंथ का पाठ सुनेंगे और अंधे देखने लगेंगे, क्योंकि उनकी आंखों से धुंधलापन और अंधकार दूर हो जाएगा। दीनहीन प्रभु में आनंद मनाएंगे, और जो सबसे अधिक दरिद्र है वे इज़राइल के परम पावन ईश्वर की कृपा से उल्लासित हो उठेंगे, क्योंकि अत्याचारी नहीं रह जाएगा, घमंडियों का अस्तित्व मिटेगा और उन कुकर्मियों का विनाश होगा जो दूसरों पर अभियोग लगाते हैं, जो कचहरी के न्यायकर्ताओं को प्रलोभन देते और बेईमानी से धर्मियों को अधिकारों से वंचित करते हैं। इसलिए प्रभु याकूब के वंश का ईश्वर, इब्राहिम का उद्धार करता ये कहता है, अब से याकूब को फिर कभी निराशा नहीं होगी, उसका मुख कभी निस्तेज नहीं होगा, क्योंकि वो देखेगा कि मैंने उसके बीच उसकी संतति के साथ क्या किया है, और वो मेरा नाम धन्य कहेगा। लोग याकूब के परम पावन प्रभु को धन्य कहेंगे और इज़राइल के ईश्वर पर श्रद्धा रखेंगे। भटकने वालों में सद्बुद्धि आएगी और विद्रोही शिक्षा स्वीकार करेंगे।
दोस्तों, अभी आपने सुना आज का पहला पाठ जो लिया गया था नबी इसाईस का ग्रंथ अध्याय 29 वाक्य संख्या 17 से 24 तक, और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। आइए दोस्तों, अब सुनते भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।
आसमान पे सुनहरा सितारा, देखो उसकी चमक वो कितना है न्यारा, देखो आसमान पे सुनहरा सितारा, देखो उसकी चमक वो कितना है न्यारा। सब चले उनसे मिलने, भेंट अपनी उनको अर्पण कर ले। नाचो गाओ झूम झूम के, हम सब का है वो तारणहारा, ओ तारणहारा। देखो आसमान पे सुनहरा सितारा, देखो उसकी चमक वो कितना है न्यारा। सबके दिल में खुशियां समाई, पाप से बचाने यीशु जो आए। सबके दिल में खुशियां समाई, पाप से बचाने यीशु जो आए। जन्मा है यीशु मसीहा प्यारा, हम सब का है वो राज दुलारा, ओ राज दुलारा। देखो आसमान पे सुनहरा सितारा, देखो उसकी चमक वो कितना है न्यारा। चरवाहों ने चरनी में देखा, यीशु राजा था चरनी में लेटा। चरवाहों ने चरनी में देखा, यीशु राजा था चरनी में लेटा। आओ मिल गाए हम महिमा उसकी, हम सब का है वो पालनहारा, ओ पालनहारा। देखो आसमान पे सुनहरा सितारा, देखो उसकी चमक वो कितना है न्यारा। देखो आसमान पे सुनहरा सितारा, देखो उसकी चमक वो कितना है न्यारा।
दोस्तों, अभी आपने सुना भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। आइए दोस्तों, अब सुनते हैं आज का पवित्र सुसमाचार जो लिया गया है संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 9 वाक्य संख्या 27 से 31 तक, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।
ईसा वहां से आगे बढ़े और दो अंधे यह पुकारते हुए उनके पीछे हो लिए, दाऊद के पुत्र हम पर दया कीजिए। जब ईसा घर पहुंचे तो ये अंधे उनके पास आए। ईसा ने उनसे पूछा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूं? उन्होंने कहा, जी हां प्रभु। तब ईसा ने यह कहते हुए उनकी आंखों का स्पर्श किया, जैसा तुमने विश्वास किया वैसा ही हो जाए। उनकी आंखें अच्छी हो गईं और ईसा ने यह कहते हुए उन्हें कड़ी चेतावनी दी, सावधान, यह बात कोई न जानने पाए। परंतु घर से निकलने पर उन्होंने उस पूरे इलाके में ईसा का नाम फैला दिया।
दोस्तों, अभी आपने सुना आज का पवित्र सुसमाचार, जो लिया गया था संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 9 वाक्य संख्या 27 से 31 तक, और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। आइए दोस्तों, अब सुनते भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।
Thank you. सृष्टि खिल उठी है, सारी सृष्टि खिल उठी है उन्हें पाकर, उन्हें पाकर झूम ले मनवा आज तू नाच ले, झूम ले मनवा आज तू नाच ले।
दोस्तों, अभी आपने सुना भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, इस समय आप रेडियो वेरितास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर सुन रहे हैं। आप हमें ऑनलाइन hindi.rvasia.org पर भी सुन सकते हैं। दोस्तों, अगर आप एंड्रॉइड या iOS मोबाइल चलाते हैं तो आप प्ले स्टोर या एप स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, हमें फेसबुक पेज पर लाइक करने के लिए सर्च कीजिए सत्यस्वर वेरितास। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है RVA हिंदी। हमारा ट्विटर हैंडल है @RVA हिंदी। हमारे वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारा यूट्यूब चैनल है RVA हिंदी। दोस्तों, आप अपने सुझाव और रचनाएं भेजने के लिए हमसे संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9165597216। हमारा ईमेल एड्रेस है rva.satyaswar@yahoo.in। आप हमें पत्र भी भेज सकते हैं। हमारा पता है RVA ऑफिस, सत प्रकाशन, 10 खंडवा रोड, भवरकुआ पुलिस स्टेशन के पास, इंदौर, मध्य प्रदेश। हमारा पिन कोड है 452001। तो दोस्तों, हमसे जुड़े रहे और सुनते रहे सत्य स्वर, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम संत सानिध्य, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।
साथियों, सिस्टर गंगा रावत SSPS का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज हम संत सानिधि के अंतर्गत संत फ्रांसिस जेवियर की जीवनी सुनेंगे। भारत तथा जापान के प्रेरित संत जेवियर का जन्म स्पेन के संगुएसा नावारे के निकट जेवियर के किले में 7 अप्रैल सन 1506 में हुआ था। अपने ही देश में प्रारंभिक अध्ययन समाप्त करने के बाद वे सन 1525 में फ्रांस के संत बारबरा कॉलेज में भर्ती हो गए। अगले ही वर्ष सेवोयार्ड एवं पियर रे फेवरे नाम के दो युवकों से उनकी गाढ़ी मित्रता हो गई। साथियों, कॉलेज के जीवन में मित्रता बढ़ना स्वाभाविक है। एक तीसरे मित्र इग्नासियस लॉयोला से भी संपर्क बढ़ गया। धीरे धीरे सात नव युवकों की एक बढ़िया मित्र मंडली बन गई, जिसका उद्देश्य बड़ा ऊंचा था। 15 अगस्त 1534 में इस मंडली ने आजीवन ब्रह्मचर्य जीवन बिताने की शपथ ली। उन्होंने अपनी इस संस्था का नाम येसु समाज रखा और सर्वसम्मति से इग्नासियस लॉयोला को उसका अध्यक्ष बनाया। दर्शन शास्त्र का अध्ययन समाप्त करने के बाद फ्रांसिस जेवियर ने स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त करने के बाद बीयूवेयस कॉलेज में 4 वर्ष तक रीजेंट के पद पर कार्य किया। इसके बाद उन्होंने धर्म विज्ञान का गहन अध्ययन किया। अपने साथियों के साथ वे पेरिस से वेनिस के लिए रवाना हुए। वेनिस से वे फिलिस्तीन जाना चाहते थे। वेनिस में उन्होंने इग्नासियस लॉयोला से पुरोहिताई संस्कार ग्रहण किया। किसी कारणवश फिलिस्तीन न जा सकने के कारण फ्रांसिस बोलोगना में रहे, बाद में रोम गए, जहां इग्नासियस अपने अन्य मित्रों के साथ अपने येसु समाजी धर्म संघ की मान्यता प्राप्त करने संत पिता पॉल तृतीय से निवेदन करने आए थे। कुछ समय तक इनके साथ रहने के बाद फ्रांसिस लिस्बन लौट आए। साथियों, फ्रांसिस का लिस्बन आने का कारण यह था कि पुर्तगाल के राजा जॉन तृतीय ने उनसे निवेदन किया था कि वे भारत तथा अन्य पूर्वी देशों में ख्रिस्त के सुसमाचार का प्रचार करें। इसके लिए उन्हें राजा से आवश्यक कागजात प्राप्त करना था। अनुकूल मौसम आने तक फ्रांसिस लिस्बन में रहे। वे राजमहलों के लोगों का पाप स्वीकार सुनते तथा धर्म की शिक्षा देते थे। अनुकूल मौसम पाकर इनका जहाज गोवा के लिए रवाना हुआ। 13 माह की लंबी तथा अनेक कष्टों से भरी यात्रा के बाद जहाज गोवा तट पर लगा। अनेक साथी बीमार पड़ गए थे। फ्रांसिस ने गोवा में अपना कार्य शुरू किया। सबसे पहले यहाँ की भाषा और रीति रिवाज सीखे। लोगों को प्रवचन देना, बीमारों को देखने जाना तथा धर्म शिक्षा की पुस्तक तैयार करना, यह सब काम उन्होंने बड़े धर्म उत्साह के साथ किए। साथियों, फ्रांसिस का ध्यान विशेषकर गरीब मछुआरों की ओर गया। कारण यह था कि उनसे पहले आए मिशनरियों ने उनकी बड़ी उपेक्षा की थी। कुछ दिन वहां प्रचार कार्य करने के बाद वे मन्नार की खाड़ी की ओर बढ़े। 5-7 वर्ष पहले यहां के लोगों को सुसमाचार सुनाया गया था, पर पुरोहितों की कमी के कारण वह करीब करीब अदृश्य हो गया था। गोवा के मछुआरों में फ्रांसिस काफी लोकप्रिय हो गए थे। लोगों ने गीली आंखों से उनकी विदाई दी। यहाँ फ्रांसिस ने 2 वर्ष प्रचार कार्य किया और परवा जाति के अनेक लोगों को ख्रिस्तीय धर्म की दीक्षा दी। यहाँ से फ्रांसिस जापान के लिए रवाना हुए। मलका में 4 माह रुकने के बाद वे अम्बोनिया द्वीप की ओर बढ़े, कारण कि कुछ दूसरे पुरोहित वहाँ आ गए थे। कुछ दिन बाद फ्रांसिस पुनः मलका आए। यहाँ उनकी मुलाकात अनिजीरो नामक के एक जापानी से हुई। उससे फ्रांसिस ने जापान तथा वहाँ के लोगों और उनके रीति रिवाजों के बारे में काफी जानकारी हासिल की। अपने जापानी मित्र के साथ फ्रांसिस जापान पहुँचे, जापानी भाषा सीखी। वे अपने प्रचार कार्य में लग गए। जापान में बौद्ध धर्म की जड़ें काफी गहरी जमी थी। फ्रांसिस को सफलता नहीं मिली। साथियों, जापान में पुर्तगालीन उपनिवेश की स्थापना तो हो ही चुकी थी। इस प्रकार सफलता न मिलती देख फ्रांसिस ने प्रचार कार्य का ढांचा ही बदल दिया। शानदार कपड़े पहने वे राजा के दरबार में हाजिर हुए और पुर्तगाल के राजदूत के रूप में सारे कागजात पेश किए। फ्रांसिस का बड़ा सम्मान हुआ। जापान में धाक सी जम गई, पर फ्रांसिस तो सही मायने में स्वर्गिक राज्य के राजा क्रिस्त के दूत थे और उन्हें उसी का काम करना था, अतः इस रूप में उन्हें काफी सफलता मिली। करीब 2 वर्ष जापान में रहने के बाद फ्रांसिस वापस गोवा के लिए रवाना हुए। वापसी यात्रा में कुछ समय मलका में रुकने के बाद अपने जापानी मित्र अनिजीरो के साथ गोवा पहुंचे। अनिजीरो ने गोवा में बपतिस्मा ग्रहण किया। साथियों, उसे ईश्वरीय विश्वास का फल नाम मिला। गोवा के मछुआरों में हर्ष और उल्लास था। अपने प्रिय साथी को पाकर वे खुश थे, परंतु उनकी खुशी थोड़े ही दिनों की थी। फ्रांसिस का ध्यान चीन की ओर गया। गोवा में कुछ घरेलू उलझनों को सुलझाने के बाद वे चीन के लिए रवाना हो गए, परंतु रास्ते में ही सख्त बीमार हो गए। साथियों, हांगकांग से करीब 200 किलोमीटर दूर सेंसियन द्वीप के निकट 3 दिसंबर 1552 को फ्रांसिस का स्वर्गवास हो गया। फ्रांसिस का एक मित्र लिखता है, मैं उसे जलती हुई मोमबत्ती हाथ में लिए हुए देख रहा हूँ, जिसके होंठों से ख्रिस्त का नाम फूट रहा है, और वह खुशी खुशी अपने सृष्टिकर्ता ईश्वर को अपनी आत्मा सौंप रहा है। फ्रांसिस के साथियों ने वहीं उस द्वीप की रेत में उसके शव को दफना दिया। करीब 10 सप्ताह बाद यह जहाज अपनी वापसी यात्रा पर उसी द्वीप के किनारे लगा। साथियों, फ्रांसिस के साथियों ने सोचा कि उसके अवशेष गोवा ले चलें। जब उन्होंने रेत अलग की तो यह देखकर उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि शव बिल्कुल ताजा था। उसमें किसी भी प्रकार की कोई दुर्गंध नहीं थी। फ्रांसिस का शव मलका में दफना दिया गया। गोवा के विश्वासियों के आग्रह पर फ्रांसिस के अवशेष मंगवाए गए। 1 वर्ष बाद जब मलका में फ्रांसिस की कब्र खोदी गई, तो उस समय भी शव ताजा ही था। वह शव गोवा लाया गया। साथियों, आज भी वह शव गोवा की राजधानी पंजिम के महागिरजा घर में रखा है। फ्रांसिस को 1619 में धन्य तथा 1622 में संत घोषित किया गया। संत फ्रांसिस धर्म प्रांतों के भी संरक्षक संत माने जाते हैं। 3 दिसंबर को संत फ्रांसिस जेवियर का पर्व मनाया जाता है।
दोस्तों, अभी आपने सुना कार्यक्रम संत सानिध्य और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, अगर आप यह कार्यक्रम पुनः सुनना चाहते हैं तो अपने मोबाइल में आरवीए मोबाइल ऐप डाउनलोड कर आर्काइव में यह कार्यक्रम पुनः सुन सकते हैं। तो दोस्तों, आज्ञा दीजिए अपने मित्र प्रवीण परमार को। धन्यवाद।